بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا آشرے پراپت کیا ہے سورگی محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भागी हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है, अबान की 13 और नवंबर की 4 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के चौथे महीने रबीउस सानी की 9 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसकी बाद आपके सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा, और उसके बाद आपकी सेवा में पेश किया जाएगा हजरत मासूमे कुम की वफात के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम, और आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में पेश किया जाएगा विश्व साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तेरह अबान की विशाल रैलियों ने दुश्मनों को फिर किया निराश। ईरान 43 साल से आजाद है, अब उसे बंधक नहीं बनाया जा सकता। हम हरगिज दुधारू गाय नहीं बनेंगे, राष्ट्रपति रईसी। इमरान खान पर हमला करने वाला आया सामने, जुर्म स्वीकार करते हुए खोले कई राज। पिछले 24 घंटों में मारे गए 50 यूक्रेनी सैनिक, कई वाहन हुए नष्ट। तो दोस्तों, अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। पूरे ईरान में आज शुक्रवार को विश्व साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईरान की राजधानी तेहरान सहित देश के सैकड़ों छोटे बड़े शहर में विशाल रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग विशेषकर छात्र भाग ले रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक 43 साल पहले 4 नवंबर 1979 को ईरान के क्रांतिकारी छात्रों ने के एक गुट ने इस्लामी क्रांति के विरुद्ध अमरीकी षड्यंत्रों के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए तेहरान में स्थित अमरीकी दूतावास यानी अमरीका के जासूसी अड्डे पर नियंत्रण कर लिया था। हर साल 4 नवंबर को विश्व साम्राज्य से संघर्ष और छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये दिन ईरान की जनता के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां लगातार देश में अपने किराए के एजेंटों द्वारा दंगे भड़काने का काम कर रही हैं। इस साल पूरे ईरान में व्यापक रैलियां निकाली जा रही हैं, और पूरा ईरान हयात मिन्नज़िल्ला, अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज रहा है। ज्ञात रहे कि 13 अबान बराबर 4 नवंबर को ईरान में इसी दिन अलग 2 सालों में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिनकी याद में आज के समूचे देश में रैलियां निकाली जाती हैं। आज ही के दिन 13 अबान 1343 हिजरी शमसी बराबर 4 नवंबर 1964 को इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को देश से तुर्की निष्कासित किया गया था और 13 अबान 1357 हिजरी शमसी बराबर 4 नवंबर 1978 को पहलवी सरकार के सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों की हत्या की थी और आज ही के दिन 13 अबान 1979 को स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का अनुसरण करने वाले छात्रों ने विदित में अमरीकी दूतावास और वास्तव में अमरीका के जासूसी अड्डे पर नियंत्रण कर लिया था, जिसे स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी क्रांति का नाम दिया था। ईरान 43 साल से आज़ाद है, अब उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रपति रईसी ने 13 आबान के कार्यक्रम में जो बाइडन को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान 43 साल पहले आज़ाद हो चुका है और वो दृढ़ संकल्प रखता है कि आपका गुलाम नहीं बनेगा, हम हरगिज दुधारू गाय नहीं बनेंगे। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति रईसी ने आज सुबह तेहरान में अमेरिका के जासूसी अड्डे के सामने आयोजित 13 आबान के कार्यक्रम में कहा कि उस शख्स और भावनाओं की को भी फिरौन कहते हैं जो केवल अपने आप को देखते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं, चाहे बहुत सारे इंसानों के हित खतरे में पड़ जाए और बहुत सारे इंसानों की जान चली जाए। इसी प्रकार राष्ट्रपति ने कहा कि इमामों और पवित्र कुरान ने चेतावनी दी है कि सावधान रहो कि अहंकार का शिकार मत हो जाना, यही खतरा व्यक्ति और समाज के पतन का कारण बनता है। आज अमरीकी शासन व्यवस्था अहंकार व साम्राज्य का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के उस कथन की ओर संकेत किया जिसमें आपने अमेरिका को महाशैतान की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए इस बात के लिए तैयार है कि बहुत सारे लोग खत्म हो जाएं और उनके हित खतरे में पड़ जाएं। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि महान ईरानी राष्ट्र ने अपने वैभवशाली क्रांति से साम्राज्य से मुकाबले को अपने एजेंडे में शामिल कर रखा है और 22 बैमन को उसने शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार का अंत कर दिया और 13 आबान को छात्रों की अंतर्दृष्टि ने साम्राज्य से मुकाबले को पूरा कर दिया। उन्होंने 13 आबान के दिन को विश्व साम्राज्यवाद से मुकाबले और ईरानी जनता की मजलूमियत का प्रतीक बताया और कहा कि आज के दिन फिरौनी साम्राज्यवादी और अहंकारी कृतियों को बयान किया जाना चाहिए, अहंकारियों की चालों और षड्यंत्रों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, वे राष्ट्रों के मध्य फूट डालना चाहते हैं ताकि अपने वर्चस्व को जारी रख सकें। राष्ट्रपति ने अमेरिका की आतंकवादी कार्रवाइयों की ओर संकेत करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया की 300 से अधिक जंगों में मौजूद रहा है। अमेरिका ने 62 देशों में विद्रोह करवाया, सबसे अधिक लोग अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम की जंग में मारे गए हैं और अमेरिका ने इन युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबला राष्ट्रों को आजाद करने के बहाने और तकफीरी और उनके समर्थक गुटों को बनाना क्षेत्रों के देशों में अमरीकी हस्तक्षेप के परिणाम हैं। उन्होंने अमरीकी भावना को अहंकारी व वर्चस्ववाद बताया और कहा कि अमरीका चाहता है कि दूसरे देश उसके लिए दुधारू गाय बन जाएं। इतने सारे अपराधों के बावजूद वह अपना परिचय आज़ादी और लोगों के अधिकारों के समर्थक व पक्षधर के रूप में करता है। दाइश को उसने बनाया और वो दूसरे देशों को में अपराध कर रहा है। जनरल सलामी ने कहा है कि शत्रुओं की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान की इस्लामी क्रांति फोर्स IRGC के चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि शत्रुओं को जान लेना चाहिए कि उनकी हस्तक्षेपपूर्ण कार्रवाइयों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तस्नीम के अनुसार मेजर जनरल सलामी ने शुक्रवार को 13 आबान की रैली में पत्रकारों से बात करते हुए रैली में उपस्थित जनसमूह की सराहना की। जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि विदेशी संचार माध्यम यदि वास्तव में निष्पक्ष हैं तो उनको इस घटना की जानकारी दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तेहरान के इमाम जुमा ने ईरान में होने वाली हालिया दिनों में दंगों को अमेरिका की साजिश बताते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में बैठे शैतान ईरान में उपद्रवियों के जरिए जातीय मुद्दों को हवा देने और गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने की साजिश रच रहे हैं। پراپ رپورٹ کے مطابق تہران کے امام جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے شکروار 4 نومبر کو وشو سامراج کے ورودھ سنگھرش کے راشٹریہ دیوس کے اوسر پر پورے ایران میں آیوجت ہونے والی وشال ریلیوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی جنتا امریکہ کے اپرادھوں کو بھولی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آج بھی ایرانی راشٹر پورے جوش اور جذبے کے ساتھ امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تہران کے امام جمعہ کاظم صدیقی نے کہا کہ انتراشٹریہ سمودائے کو دھوکہ دینے اور وبھن دیشوں پر حملہ کرنے کے علاوہ امریکہ کے شرمناک ریکارڈ میں 62 ودروہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہنسک آکرمک اور خون خرابے والے شاسن کے روپ میں اس نے ہمیشہ راشٹروں کے ادھیکاروں کا الگھن کیا ہے۔ تہران کے امام جمعہ نے افغانستان اور عراق میں امریکی خونی نیتیوں اور اس کی شرمناک ہار کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف پرتبندھوں نے بھی امریکہ کے کرور اور پراجت چہرے کو دنیا کے سامنے لا دیا ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے یوکرینی ودیش منتری کے بیان پر پرتکریا دیتے ہوئے کہا کہ بہوناتمک بیان مشکل کو حل نہیں کرے گا۔ ناصر کنانی چافی نے تہران کے خلاف یوکرینی ودیش منتری کے دعووں کی پرتکریا میں کہا کہ آروپ لگانے کے بجائے ثبوت پیش کرنے کے سمبندھ میں دوپکشی بیٹھک آیوجت کرنے پر آدھارت ایران کے سجھاؤ کا جواب دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین یدھ کے سمبندھ میں ایران نشپکش اور ثبوت کے بنا آروپ لگانے سے یوکرین سنکٹ کے سمادھان میں کوئی سہایتا نہیں ملے گی۔ پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان پر لانگ مارچ کے دوران ہوئے حملے کے مکھ آروپی نے اپنا اپرادھ سویکار کرتے ہوئے گولی چلانے کی وجہ بتائی ہے۔ پراپ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان اپنے سمرتھکوں کی بھاری سنکھیا کے ساتھ 380 کلومیٹر کا لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے ذریعے وہ اپنی راجنیتک شکتی کا پردرشن کر رہے ہیں۔ اس بیچ گروار 3 نومبر کو ان پر حملہ ہو گیا جس میں وہ گھائل بھی ہو گئے۔ ڈان سماچار پتر کے انوسار گولی باری عمران خان کے کنٹینر کے پاس ہوئی۔ اس فائرنگ میں ایک ویکتی کے ہتاہت ہونے کی بھی سوچنا ہے جبکہ عمران خان سمیت 6 لوگ گھائل ہو گئے ہیں۔ روس اور یوکرین کے بیچ یدھ جاری ہے۔ لوہان سیتر چھوڑانے کے پریاس میں یوکرین کے 50 جوان مارے گئے ہیں جبکہ کئی واہن نشٹ ہو گئے ہیں۔ روس کی نیوز ایجنسی تاس کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں لوہانس پیپلز ریپبلک LPR کی سیناؤں کے ساتھ لڑائی میں یوکرین کے کم سے کم 50 جوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ وہیں LPR رکشا منترالے کے پروکتا ایوان فلیپونیکو نے بتایا کہ LPR پیپلز ملیشیا کے سکریہ آکرمک کاریوں کے پرینام سوروپ یوکرین کو جوانوں اور اپکرنوں کی کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے راشٹر سماچار یہیں سماپت ہوتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
دوستو، راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم لے کر اپستھت ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ ایران پر پھر سے لگائے گئے پرتیبندھ، پشچم کی اور سے آتنکوادیوں کو یوکرین بھیجے جانے کا دعویٰ، اور کشمیر میں ٹوریزم جیسے مدوں پر ہم کارکرم میں وستار سے چرچا کریں گے۔ ایران کی ودیشی مدرا کی آمدنی کو روکنے کے لیے امریکہ نے پھر سے تہران پر نئے پرتیبندھ لگائے ہیں، جبکہ سوئم امریکی راشٹرپتی ان پرتیبندھوں کے نشکری ہونے کی بات کو پہلے ہی سویکار کر چکے ہیں۔ اس بارے میں ایک سمیکشا لے کر حاضر ہیں روش زیدی۔
امریکہ کے وت منترالے نے ایران کے ورودھ نئے پرتیبندھوں کی گھوشنا کی ہے۔
अमरीकी वित्त मंत्रालय का दावा है कि उसने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चैनल के सदस्यों को प्रतिबंधित किया है जो उनके कथनानुसार तेल का व्यापार करके हिजबुल्ला और आईजीसी के लिए पैसों का प्रबंध करता है। इस प्रकार से अमरीका ने 6 लोगों, 17 कंपनियों और 11 पानी के जहाजों को प्रतिबंधित किया है। जिन लोगों को प्रतिबंधित किया गया है वे ईरान, स्विट्जरलैंड, लेबनान और फ्रांस के नागरिक हैं। वे 17 कंपनियों जो अमरीकी प्रतिबंधों की जद में आई हैं वे यूएई, स्विट्जरलैंड, मार्शल आइलैंड, सिंगापुर और तुर्की से संबंधित हैं। जिन पानी के जहाजों को अमरीका की ओर से प्रतिबंधित किया गया है वे पनामा, जिबूती, लाइबेरिया और कुक आइलैंड के ध्वजों के साथ चलते हैं। अमरीका की ओर से ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंध वास्तव में तेहरान की विदेशी मुद्रा की आय को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। ईरान पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते से एक तरफा तौर पर निकलने के बाद ईरान के विरुद्ध अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए थे। ये काम इसलिए किया गया था कि प्रतिबंधों के दबाव में आकर ईरान अमरीका की गैर कानूनी और अतार्किक मांगों के सामने झुक जाए। हालांकि ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के उद्देश्य से अमरीका की ओर से तेहरान के विरुद्ध बड़े प्रतिबंध पहले भी लगाए जा चुके हैं, किंतु इन प्रतिबंधों की विफलता को स्वयं अमरीका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार किया है। दूसरी ओर ईरान में उपद्रव के बहाने अमरीका ने परमाणु वार्ता को लंबित कर दिया है। अब अमरीकी अधिकारी ईरान की हालिया अशांति के बारे में हस्तक्षेपपूर्ण बयान भी देने लगे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपने संबोधन में कहा कि चिंता मत करो, हम ईरान को आज़ाद करेंगे, हम ईरान को आज़ाद करके रहेंगे, वे जल्द ही आज़ाद हो जाएंगे। अमरीकी राष्ट्रपति का ये बयान ईरान के बारे में व्हाइट हाउस की सोच को स्पष्ट करता है। जो बाइडेन ने जब ये देखा कि प्रतिबंध प्रभावहीन हो रहे हैं और अत्यधिक दबाव की नीति भी जवाब नहीं दे पा रही है, तो उन्होंने अराजकता फैलाने की ट्रंप की नीति का अनुसरण शुरू किया है, जिसकी विफलता को 13 अबान की रैलियों में देखा जा सकता है।
रूसी रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन में हालिया दिनों में 200 आतंकी मारे गए हैं। इससे पहले भी रूस की ओर से ये कहा जाता रहा है कि यूक्रेन में विदेशी आतंकवादी उसकी सेना के विरुद्ध सक्रिय हैं और उनमें से कई पहले भी मारे गए हैं। विस्तार से इस बारे में बता रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख का कहना है कि यूक्रेन की सहायता के उद्देश्य से अमेरिका और ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को इकट्ठा कर रहे हैं। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख निकोलाई पेत्रोशेव के अनुसार इन आतंकवादियों को एकत्रित करके रूस के विरुद्ध यूक्रेन की सेना के साथ लड़वाया जा रहा है। पेत्रोशेव ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन की गुप्तचर सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को एकत्रित करके कीव भेज रही है। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्री ने कहा था कि यूक्रेन में रूस के विरुद्ध संघर्ष में पिछले 2 सप्ताहों के दौरान 200 आतंकवादी मारे गए थे। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई आरंभ होने के समय से अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम ने यूक्रेन की अभूतपूर्व सैन्य सहायता की है। इसी के साथ पश्चिम ने मॉस्को के खिलाफ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। इन दोनों कामों से पश्चिम का उद्देश्य रूस की प्रगति को रोकना है। पश्चिमी संचार माध्यमों और यूक्रेन के अधिकारियों ने भी इस देश में विदेशी आतंकवादियों की उपस्थिति की बात को स्वीकार किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मई 2022 में अपने एक लेख में ये बात लिखी थी कि रूसी सेना के मुकाबले में हथियारों और सैन्य उपकरणों की कमी के कारण यूक्रेन से कई विदेशी आतंकवादी भाग गए। इससे पहले द वॉशिंगटन फ्री बेकर वेबसाइट ने उत्तरी अमेरिका और यूरोप से अतिवादी गुटों के सदस्यों के यूक्रेन भेजे जाने की बात कही थी। एक अन्य रिपोर्ट ये बताती है कि यूक्रेन की सेना की सहायता के लक्ष्य से तुर्की सीरिया से आतंकवादियों को क्यू भेजने के प्रयास कर रहा है। ये सारे काम अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम द्वारा रूस का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे हैं। अमेरिका और उसके पश्चिमी तथा गैर पश्चिमी घटक यूक्रेन युद्ध को रूस विशेषकर पुतिन से अपना हिसाब चुकाने के अर्थ में देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 2 दशकों से अमेरिका और नेटो की कारस्थानियों के मुकाबले में डटे हुए हैं। पश्चिमी नेताओं का मानना है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की विजय जहां पर उनकी बदनामी का कारण बनेगी, वही क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के प्रभाव को बढ़ाएगी। इसलिए उन्होंने यूक्रेन युद्ध में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है ताकि रूस को किसी भी हालत में सफलता हासिल न होने पाए। इसी संदर्भ में रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि पश्चिम ने रूस के विरुद्ध व्यापक युद्ध छेड़ दिया है। इसके लिए एक ओर वे यूक्रेन को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार दे रहे हैं, दूसरी ओर उन्होंने रूस के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। वास्तव में पश्चिम और अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन युद्ध की आड़ में हमें रूस से अपना हिसाब किताब साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है।
तो दोस्तों, अब हम रुख करते हैं भारत का। भारत की केंद्र सरकार का कहना है कि कश्मीर में टूरिज्म फिर से फल फूल रहा है, जबकि स्थानीय नेता इस दावे को रद्द करते हुए ये कहते हैं कि कश्मीर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी टूरिस्ट की ही सूची में रखा जा रहा है। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर के हवाले से मौजूदा प्रशासन ने बहुत बड़े दावे किए, परंतु जमीनी स्तर पर इसका मेल ही नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि पंडितों के हवाले से जो राजनीति की गई, अब वो असफल साबित हुई। उन्होंने कहा कि पहले ये कहा गया कि उनके लिए अब यहाँ सब सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, परंतु पिछले वर्ष में जिस तरह से पंडित बरादरी की हत्याएं हुई, उससे सुरक्षा एजेंसियों की पोल खुल गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा ये मानना है कि कश्मीर एक डेलिकेट इशू है, इसको राजनीतिक द्वारा ही सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, परंतु जो स्थिति बनी है उसमें ताकत के बल पर तमाम लोगों को खामोश किया जाना एक नीति बन गया है। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
उस गांव को तो खाली कर दिया, घरों पर ताले लगा के वो जम्मू चले गए। वो इसमें अकेले नहीं है, कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत यहाँ वो वापस आए, उनको यहाँ बसाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि वो मजबूर हो गए यहाँ से वापस जम्मू चले गए। ये बड़ी अफसोस की बात है, और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते। वो इसी नशे में हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट सारा कुछ है, झूठ पे झूठ बताया जाता है। जनाब, इतने करोड़ टूरिस्ट आए, जहाँ के हमें पता है कि आप यात्रियों को भी टूरिस्ट के नंबर में गिन रहे हो, उतने ही टूरिस्ट आए जितने पहले आए होंगे, 15 लाख 18 लाख उसके दरमियान होंगे, उससे ज़्यादा एक टूरिस्ट भी नहीं। लेकिन सिर्फ टूरिज्म टूरिज्म करके इनको लगता है कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं। अगर यहाँ हालात वाकई नॉर्मल हैं तो ये लोग मजबूर होकर चले क्यों गए, और उसके बाद फिर मीडिया को झूठ बताना।
इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर डिवीजन और जम्मू प्रांत के लिए आने वाले विधानसभा के लिए जो अधिकारी घोषित किए हैं उससे संकेत मिलना शुरू हो गए हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव अलग तौर पर लड़ने जा रहे हैं। अगर जो उन्होंने इसके संकेत अभी नहीं दिए हैं, परंतु जिस तरह से स्थिति सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि पीएजीडी यानी गुपकार अलायंस एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, बल्कि वो अलग अलग तौर पर इलेक्शनों में भाग लेंगे। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी हांजुरा ने इस हवाले से कहा कि पीएजीडी का लक्ष्य कश्मीर के विशेष इख्तियार वापस करना है, चुनाव में जाना ये राजनीति अलग तरह की है। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि हम एकजुट होकर जो हमसे छीना गया उसे वापस लाने के लिए प्रयास करेंगे। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, अभी आप कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा हमारे साथ ही कायम रिजवी से सुन रहे थे। अब आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है हजरत मासूम कुम की वफात के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम।
श्रोतागण, हजरत फातिमा मासूमा की बरसी के दुखद अवसर पर हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। स्वाति और सैयद मैसाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
इतिहास में अनेक महिलाएं ईश्वर पर ईमान और ज्ञान के शिखर पर पहुंची हैं और उन्होंने उत्कृष्टता, सद्गुण और पूर्णता के मार्ग पर कदम आगे बढ़ाए हैं। इनमें से कुछ का जिक्र ईश्वर ने कुरान में भी किया है ताकि वे दूसरे इंसानों के लिए आदर्श बन सकें। कुरान ने हजरत मरियम और हजरत आसिया को महिलाओं और पुरुषों के लिए आदर्श के रूप में पेश किया है और उनके बारे में कई आयतें नाजिल की हैं। इस्लामी विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि पूरे इतिहास में इन महिलाओं के जीवन का सत्य के खोजियों पर स्पष्ट प्रभाव रहा है। इस्लामी इतिहास की प्रभावशाली महिलाओं में हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। वे शिया मुसलमानों के सातवें इमाम हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की बेटी और आठवें इमाम हजरत अली रजा अलैहिस्सलाम की बहन थी।
हजरत मासूमा का इमाम काजिम की संतान में एक विशेष स्थान है। ज्ञान और आस्था के क्षेत्र में हजरत मासूमा की सक्रिय उपस्थिति इस्लामी इतिहास और संस्कृति में महिलाओं की उच्च स्थिति और मूल्य को दर्शाती है। संयम, सहनशीलता और दृढ़ता उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट विशेषताएं हैं। इस्लामी कैलेंडर के रबी उस्सानी महीने की 10 तारीख को हजरत मासूमा का स्वर्गवास हुआ और पूरा इस्लामी जगत शोक में डूब गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ईरान के कुम नगर में कदम रखकर इस शहर को हमेशा के लिए सुशोभित कर दिया। उनके निधन के बाद उन्हें इसी शहर में दफन किया गया।
हजरत मासूमा का पालन पोषण ऐसे खानदान में हुआ जो ज्ञान, सदाचार और शिष्टाचार की दृष्टि से अद्वितीय था। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की संतानों में हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मासूमा ज्ञान और शिष्टाचार की दृष्टि से सबसे उच्च दर्जे पर थी। ये बात धार्मिक हस्तियों द्वारा उनकी प्रशंसा से पूरी तरह स्पष्ट है।
उनकी विशेषताओं और उच्च गुणों के कारण उन्हें विभिन्न उपनामों जैसे मर्जिया, ताहिरा, सिद्दीका और हमीदा से जाना जाता है। यह महान महिला हदीस बयान करने वाली या मुहद्दिसा महिलाओं में से एक है। हजरत फातिमा मासूमा हदीस बयान करके लोगों को अवगत किया करती थी। दिलचस्प बात यह है कि हजरत मासूमा द्वारा बयान की गई हदीसें प्रामाणिक हदीसें हैं जो इमामत और विलायत की नींव को मजबूत करती है। इन हदीसों के अनुसार इमामत और विलायत एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अल्लाह के रसूल द्वारा निर्धारित की जाती है और इमाम पैगंबर इस्लाम का योग्य और वैध उत्तराधिकारी होता है।
हजरत मासूमा को करीम अहले बैत या पैगंबर इस्लाम के खानदान की महान दाता की उपाधि मिली थी जो पैगंबर इस्लाम के वंशजों में से किसी भी महिला को नहीं मिली। अपने भाई हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की इमामत के दौर में हजरत मासूमा हदीसें बयान करके आम लोगों को ईश्वरीय तथ्यों से अवगत करवाती थी। वो अपने पिता और पूर्वजों की हदीसें और कथन बयान करती थी जो शिया और सुन्नी धर्मगुरुओं के लिए ज्ञान का आधार बनी। हजरत मासूमा द्वारा बयान की गई हदीसों में किसी को शक और संदेह की गुंजाइश नहीं होती थी। उदाहरण स्वरूप हजरत मासूमा ने पैगंबर इस्लाम से एक हदीस बयान की थी कि जो व्यक्ति पैगंबर के परिजनों की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होगा।
इतिहासकारों ने लिखा है कि एक दिन पैगंबर इस्लाम के परिजनों के चाहने वाले धर्मशास्त्र और अन्य विषयों के बारे में अपने कुछ सवाल लेकर पवित्र शहर मदीना पहुंचे। वे पैगंबर इस्लाम के पौत्र हजरत इमाम मूसा काजिम से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करना चाहते थे। जब यह लोग हजरत इमाम मूसा काजिम के घर पहुंचे तो पता चला कि इमाम सफर पर गए हुए हैं। उन्होंने अपने सवाल लिखित रूप में इमाम मूसा काजिम के परिजनों के हवाले कर दिए और कहा कि जब अगली बार वे मदीना आएंगे तो अपने सवालों के उत्तर ले लेंगे। लेकिन मदीने से रवाना होने से पहले उन्हें पता चला कि इमाम की बेटी हजरत मासूमा ने उनके सभी सवालों के जवाब लिखकर तैयार कर दिए हैं। अपने सवालों के जवाब देकर वे बहुत खुश हुए। जब वे लोग मदीने से लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात इमाम मूसा काजिम से हुई। उन लोगों ने पूरी बात इमाम को बताई। इमाम मूसा काजिम ने सवाल और उनके जवाब देखे तो कहा कि सारे जवाब सही हैं और फिर भावुक होकर कहा कि इस बेटी पर बाप कुर्बान जाए।
हजरत मासूमा के जीवन का एक महत्वपूर्ण दौर मदीने से उनका प्रवास और मर्व की ओर यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा थी जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी लेकिन पैगंबर इस्लाम के परिजनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। जब अब्बासी खलीफा मामून ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ने और मर्व में रहने के लिए मजबूर किया तो हजरत मासूमा ने भी अपने भाई की मोहब्बत में उनके पास जाने का इरादा किया। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि मदीने का वातावरण भी पैगंबर इस्लाम के अहले बैत के लिए सुरक्षित नहीं था, इसलिए इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन हजरत मासूमा सल्लामुल्लाह अलैहा को मर्व आने के लिए एक पत्र लिखा जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार के 20 से अधिक सदस्यों के साथ मदीना छोड़ दिया और मर्व का रुख किया।
हजरत मासूमा ने अपने भाई हजरत इमाम अली रजा के निमंत्रण पर मदीने से जो यात्रा शुरू की वह उनकी राजनीतिक और सामाजिक कार्यशैली को समझने के लिए काफी है। इस यात्रा में हजरत मासूमा ने धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने इमामत के बारे में पैगंबर इस्लाम की हदीसों को बयान किया और अब्बासी शासकों की हकीकत आम लोगों के सामने खोल कर रख दी। जब हजरत मासूमा मदीने से निकली और रास्ते में अब्बासी शासक के कारिंदों ने उनके कारवां पर हमला किया और झड़पें हुई तो सबको मालूम हो गया कि मामून ने हजरत इमाम अली रजा को अपना उत्तराधिकारी केवल जनता को धोखा देने और अपनी छवि सुधारने के लिए बनाया है।
حضرت معصومہ کا کارواں جب ایران کے ساوے شہر کے قریب پہنچا اور اس پر عباسی شاسک کے کارندوں کا حملہ ہوا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ عباسی خلیفہ پیغمبر اسلام اور ان کے پریجنوں کا دشمن ہے۔ عباسی خلیفہ کے کارندوں نے حضرت معصومہ کے کارواں کا راستہ روک لیا اور ان کے قافلے میں شامل کئی لوگوں کو شہید کر دیا۔ یہ گھٹنا اتنی بھیانک تھی کہ اس کے کارن حضرت معصومہ گمبھیر روپ سے بیمار ہو گئیں۔ جب حضرت معصومہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ مرو کی اور اپنی یاترا جاری نہیں رکھ سکیں گی تو انہوں نے اپنے کارواں کے لوگوں سے کہا کہ قم کی اور بڑھیں۔ انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ حضرت معصومہ نے کہا کہ مجھے قم لے چلو، اس لیے کہ میں نے اپنے پتا سے سنا ہے کہ یہ شہر پیغمبر اسلام کے پریجنوں کے چاہنے والوں کا ہے۔
جب قم کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت معصومہ اس شہر کی اور آ رہی ہے تو پورا شہر ان کے سواگت کے لیے امڑ پڑا۔ سات خاندان کے موسیٰ ابن خزرج سب سے پہلے حضرت معصومہ کے پاس جا پہنچے اور حضرت معصومہ سے انورودھ کیا کہ وہ کچھ دن ان کے گھر پر مہمان بن کر رہے اور انہیں سیوا کا موقع دے، لیکن حضرت معصومہ ساوے کی گھٹنا سے اتنی آہت تھی کہ وہ بیماری سے ابھر نہیں سکی اور 16 یا 17 دن بعد ان کا ندھن ہو گیا۔ لیکن حضرت معصومہ کے قم میں کچھ دن کی پرواز کی برکت سے کئی شتابدیوں کے بعد بھی یہ شہر آج بھی اس برکت سے لابھانوت ہے۔
حضرت معصومہ کو قم میں ہی دفن کیا گیا اور آج ان کا پوتر روزہ دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کی زیارت کا کیندر ہے۔ ان کے وجود کی برکت سے ہی یہ شہر اسلامی شکشا کا کیندر ہے، جہاں ایران اور پوری دنیا سے لوگ اپنے گیان کی پیاس بجھانے پہنچتے ہیں۔ قم کا اسلامی شکشا دھارمک کیندر دنیا بھر میں شیعہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اور مہتوپورن دھارمک شکشا کیندر ہے۔ دنیا میں اس کیندر کی پہچان سمکالین دنیا میں پرامانک اسلامی شکشاؤں کو پرسارت اور پرکاشت کرنے اور ویگیانک اور دھارمک لکشیوں کو آگے بڑھانے کے علاوہ ظلم کے خلاف پرتیرودھ کے پرتیک کے روپ میں ہے۔ حضرت معصومہ کے پوتر روزے کے تیرتھ یاتری ان کے روزے سے آدھیاتم، سنتوش، گیان اور پوترتا حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس مہان ہستی کے ندھن کی برسی پر آپ سبھی لوگوں کی سیوا میں سمویدنا پرکٹ کرتے ہیں اور اپنی بات امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث سے ختم کرتے ہیں، میرے بیٹے امام موسیٰ کی بیٹی فاطمہ کا ندھن قم میں ہوگا، ان کی سفارش اور شفاعت سے ہمارے چاہنے والے سورگ میں پرویش کریں گے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ تو دوستو، ابھی آپ حضرت معصومہ قم کی وفات کے موقع پر پیش کیے گئے ایک وشیش کاریکرم کو سن رہے تھے۔ اب آپ کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے وش سامراج کے ورودھ سنگھرش کے راشٹری دیوس کے اوسر پر ایک ان وشیش کاریکرم۔ دوستوں، وشو سامراج سے سنگھرش کے راشٹری دیوس کے اوسر پر وشیش کاریکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں روش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔ دوستوں، اسلامی گڑتنتر ایران کو وشو کی ورچسوادی اور سامراجوادی شکتیوں سے مقابلے کے پرتیک کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ گت 4 دشکوں سے ادھک کے اتہاس کو دیکھیں تو ایران کی اسلامی ویوستھا کا بہت ادھک سمے اتیاچار اور اتیاچاریوں سے مقابلے میں گزرا ہے۔ ایران کی اسلامی ویوستھا نے اتیاچاریوں اور ورچسوادیوں سے مقابلے میں کچھ ایسے کاریہ انجام دیے ہیں جو اتہاس میں پنجیکرت ہو گئے ہیں اور پرتی ورش ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ 13 آبان کا دن 3 مہتوپورن گھٹناؤں کی یاد دلاتا ہے جو وبھن کالوں میں ہوئی ہیں۔ یہ 3 گھٹنائیں اس پرکار ہیں: 13 आबान 1343 हिजरी शमसी को स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को ईरान से तुर्की निष्कासित कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें तुर्की से इराक निष्कासित किया गया और वहीं से वो फ्रांस चले गए थे। इसी प्रकार शाह की अत्याचारी सरकार के क्रियाकलापों पर आपत्ति जताने वाले कुछ छात्रों को शाह के सुरक्षा कर्मियों ने 13 आबान 1357 में शहीद कर दिया था। इसी प्रकार 13 आबान 1358 हिजरी शमसी को ईरानी छात्रों ने तेहरान में स्थित अमरीकी दूतावास को अपने नियंत्रण में ले लिया था। वास्तव में तेहरान में अमरीकी दूतावास इस देश का जासूसी अड्डा था। जब छात्रों ने अमरीका के जासूसी अड्डे पर नियंत्रण किया तो ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे दूसरी क्रांति का नाम दिया और कहा था कि ये पहली क्रांति से बड़ी क्रांति है। अमरीकी दूतावास यानी अमरीका के जासूसी अड्डे से जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं वे इस बात के सूचक हैं कि अमरीका ने ईरानी राष्ट्र के खिलाफ विभिन्न शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। अमरीका की शत्रुतापूर्ण नीतियां केवल ईरान तक सीमित नहीं है बल्कि पश्चिमी एशिया भी उसकी शत्रुतापूर्ण नीतियों से सुरक्षित नहीं है और उसने इस क्षेत्र के विभाजन के लिए अलकायदा और दाइश जैसे आतंकवादी गुटों का लालन पालन प्रशिक्षण और समर्थन किया ताकि इस क्षेत्र पर भी अपनी वर्चस्ववादी मांगों व दृष्टिकोणों को थोप सके। यमन और सीरिया में जो कुछ हो रहा है वह अमरीकी नीति का ही परिणाम है। दोस्तों, यहाँ हम बहुत ही संक्षेप में आपको कैप्चुलेशन कानून के बारे में बताना चाहते हैं। कैप्चुलेशन कानून के अनुसार ईरान में कोई भी अमरीकी व विदेशी कोई भी अपराध करता तो उस पर ना तो मुकदमा चलाया जा सकता था और ना ही उसे ईरान में दंडित किया जा सकता था बल्कि उसे उसके देश में ही दंडित किया जा सकता था। इस कानून को मान लेने का अर्थ ये था कि विदेशी धड़ल्ले से ईरान में कोई भी अपराध करें उन्हें न तो दंडित किया जा सकता था और न ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था। एक प्रकार से हर प्रकार का अपराध करने के लिए विदेशियों को कानूनी लाइसेंस देना था। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जमकर इस कानून का विरोध किया और कहा कि इस कानून पर अमल ईरानी राष्ट्र का अपमान है। अमरीका ने स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी वर्चस्ववादी नीतियों के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट समझा और ईरान में उसके कठपुतली शासक मोहम्मद रजा ने स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को देश से निकाल कर तुर्की भेज दिया और वहां से उन्हें इराक भेजा गया और अंत में उन्हें इराक से फ्रांस निष्कासित कर दिया गया। 13 आबान 1357 हिजरी शमसी में एक अन्य ऐतिहासिक घटना घटी। इस दिन तेहरान विश्वविद्यालय के छात्र शाह की अत्याचार पूर्ण नीतियों पर आपत्ति जता रहे थे कि उन्हें शाह के सुरक्षा कर्मियों ने अपने हमलों का निशाना बनाया और शाह के सुरक्षा कर्मियों के बर्बरतापूर्ण हमलों में 56 छात्र शहीद और सैकड़ों घायल हो गए। इसी वजह से ईरानी कैलेंडर में 13 आबान को छात्र दिवस का भी नाम दिया गया है। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद जो घटनाएं पेश आई हैं वे इस बात की सूचक हैं कि गत 43 वर्षों के दौरान अमरीका ने ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध अनेक शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। अमरीकी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि ईरान में जो अशांति व उपद्रव की घटनाएं घटी हैं उनके पीछे CIA और मोसाद के तत्वों का हाथ था। उनकी ये स्वीकारोक्ति इस बात की सूचक है कि अमरीका किस सीमा तक ईरानी राष्ट्र से शत्रुता रखता है। अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अपनी किताब हार्ड च्वाइसेस में ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के बाद जो उपद्रव हुए थे उनकी ओर संकेत किया और लिखा कि सन 1388 हिजरी शमसी में ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के बाद ओबामा सरकार ने पूरी दुनिया में 5000 से अधिक ईरान विरोधी तत्वों को ट्रेनिंग दी जिन पर लाखों डॉलर खर्च हुए। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने से पहले वाले राष्ट्र अध्यक्षों और अमेरिकी राजनेताओं की भांति अपेक्षा थी कि ईरान पर अधिक से अधिक राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालकर वार्ता करने और अपनी वर्चस्ववादी मांगों को मनाने के लिए तेहरान को बाध्य कर देंगे, परंतु अभी तक ईरान के संबंध में उनका कोई भी सपना साकार नहीं हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि ट्रंप ने अतीत से सीख नहीं लिया था। अगर वे अतीत से सीख लेते तो ईरान के संबंध में इस प्रकार की गलती ना करते। आज बहुत से अमरीकियों का मानना है कि ईरान के मुकाबले में ट्रंप की गलत नीतियों के परिणाम में अमरीका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से अधिक अलग थलग पड़ गया है। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने अभी 2 नवम्बर को छात्रों से मुलाकात में 13 आबान के उपलक्ष में बोलते हुए कहा था कि अमरीकी ईरान की इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ जो कुछ कर सकते थे वो किया और जो नहीं किया वो नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार उन्होंने 11 आबान यानी 2 नवंबर को अपने भाषण में कहा कि हालिया कुछ सप्ताहों के दौरान हाइब्रिड वार में अमरीका, ज़ायोनी शासन, यूरोप की कुछ सरकारों और कुछ गुटों ने ईरानी राष्ट्र को नुकसान व आघात पहुंचाने के लिए समस्त संभावनाओं का प्रयोग किया, परंतु ईरानी राष्ट्र ने उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण दिन को अमरीकी क्रोधित होते हैं क्योंकि जहां ये दिन दुष्टता का उदाहरण है वहीं इस बात को भी सिद्ध करने का दिन है कि अमरीका को परास्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च नेता ने ईरानी राष्ट्र के समर्थन पर आधारित अमरीकी अधिकारियों के आजकल के बयानों को पाखंड पर आधारित बताया और कहा कि अपने परमाणु वैज्ञानिकों के हथियारों यानी ज़ायोनी शासन का समर्थन किया और अमरीका और दूसरे देशों में ईरानी राष्ट्र का अरबों डॉलर रोककर उसे अपनी संपत्ति से लाभ उठाने से वंचित किया। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि ईरान विरोधी अधिकांश घटनाओं में अमरीकियों की भूमिका दिखाई देती है और उसके बाद वे पूरी निर्लज्जता के साथ झूठ बोलते और दावा करते हैं कि ईरानी राष्ट्र के हितैषी व शुभचिंतक हैं। राजनीतिक मामलों के एक विशेषज्ञ मेहंदी अली खानी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हेतु अमरीकी राजनेताओं के क्रियाकलापों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि दूसरे देशों में सैनिकों को उतार देना, उन्हें धमकी देना, विद्रोह करवा देना और इसी प्रकार उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगा देना जो अमेरिका की वर्चस्ववादी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हालिया एक शताब्दी के दौरान दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अमरीकियों की हस्तक्षेप की शैली रही है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप करता है। उसके जवाब में कहा जा सकता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है और अपने अवैध हितों की पूर्ति के लिए दुनिया के विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। जो देश स्वतंत्र और स्वाधीन रहना चाहते हैं उनके खिलाफ हर वो कार्रवाई करता है जिसे वो अपने अवैध हितों के लिए जरूरी समझता है। अमरीकी सरकार ने गत 4 दशकों से अधिक वर्षों के दौरान ईरानी जनता के विरुद्ध शत्रुता से काम लिया है और अपनी अवैध मांगों को ईरानी राष्ट्र पर थोपने की चेष्टा की है। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम ने ईरान पर जो हमला किया था वो भी अमरीकी समर्थन और उसके आशीर्वाद का परिणाम था। इसी प्रकार अमरीका ने ईरान के अंदर आतंकवादी गुटों का समर्थन किया और उन्हें इस्लामी व्यवस्था के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उकसाता रहा। यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि अमरीका दावा करता है कि वो ईरानी जनता का समर्थक है और उसे केवल ईरान की इस्लामी व्यवस्था से समस्या है, न कि जनता से। तो प्रश्न ये उठता है कि उसने कोरोना और गैर कोरोना के काल में बहुत सी दवाओं की खरीदारी पर जो प्रतिबंध लगा रखा है तो उससे किसे नुकसान पहुंचा, ईरान की इस्लामी व्यवस्था को या जनता को? अमरीका के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों के कारण ईरान बहुत से चिकित्सा उपकरणों व दवाओं को नहीं खरीद सका। दूसरे शब्दों में अमरीका के आर्थिक आतंकवाद के कारण बहुत से निर्दोष आम नागरिक अपनी जान से हाथ धो बैठे। अमरीका की अमानवीय नीतियों के कारण न केवल ईरान बल्कि दूसरे देशों में भी लोग परोक्ष व अपरोक्ष रूप से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। रोचक बात यह है कि अनगिनत अपराधों के बावजूद अमरीका स्वयं को मानवाधिकार का रक्षक भी कहता है और बहुत से लोग उसके इस निराधार और खोखले दावे पर विश्वास भी कर बैठते हैं। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के शब्दों में इस्लामी क्रांति की सफलता से अमरीका को ईरानी राष्ट्र से मुंह की खानी पड़ी है और अब वो स्वयं को ईरान के समृद्ध स्रोतों से दूर देख रहा है और वो ईरान वापस आने की कल्पना कर रहा है और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता वो साजिश में देख रहा है और ईरानी राष्ट्र पर अपनी इच्छाओं को थोपने के लिए अवसर की खोज में है। विश्व साम्राज्य और उसमें सर्वोपरि अमरीका ईरान को क्रांति से पहले के हालात व दौर में वापस ले जाने का स्वप्न देख रहा है, परंतु कभी भी वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। इस्लामी क्रांति इस प्रकार की बातों से बहुत अधिक मजबूत है और इस्लामी गणतंत्र का फौलादी इरादा कदापि इस बात की अनुमति नहीं देगा कि अमरीका इस प्रकार की चालों व शैलियों से दोबारा ईरान लौट आए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें। यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है 9089035065492। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो अगली सभा तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।